हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा को समझ में नहीं आया कि अमन की बातों का क्या जवाब दे। क्या वो अपने असली परी रूप में उसके सामने आ जाए, या फिर उड़कर दिखाए, या अपने परों के साथ उसके सामने आए। उसके दिमाग में इस तरह के विचार चलने लगे थे। वो सोच ही रही थी कि उसे कोई जादू करके अमन को यकीन दिलाना होगा, तभी पीछे मुड़ते ही उसके होश उड़ गए। उसके पीछे उसकी बहन सितारा परी खड़ी थी, जो उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तारा आईना देख रही हो, क्योंकि सितारा ने तारा जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगी कि अमन को वो अपने परी होने का सच बताएगी, अपनी कुछ जादुई शक्तियों का प्रयोग करेगी। लेकिन सितारा को देखकर उसकी हैरानी और बढ़ गई। क्या हुआ, तुम्हारा पति तुम्हारे परी होने पर यकीन नहीं कर रहा है? सितारा बोली। अगर तुम कहो तो मैं उसे यकीन दिला दूं? तारा थोड़े गुस्से में बोली। अपनी हद में रहो काली परी, तुमने खुद बुराइयों का रास्ता चुना है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सितारा जोर से हंसने लगी। मैं यहाँ से जाने नहीं आई हूँ तारा, मैं यहाँ इंतकाम लेने आई हूँ। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। जहाँ मुझे परियों पर हुकूमत करनी थी, साथ ही कुछ इंसानी जवानी खाना चाहती थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे 300 साल से मैं कैद में थी, और तुम जानती हो मैं इंसानों की जवानी खाने के लिए कितना तड़पी हूँ। मेरे अंदर आग सी उठती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं किसी की जवानी नहीं खा पाई। तारा अपनी बहन की ओर देखते हुए बोली। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने अपने वरदान का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तुम्हें इंसानों की जवानी खाने के लिए वरदान नहीं मिला था, बल्कि अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए। लेकिन तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग करके इंसानों के जज्बातों और उनकी जवानी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें सिर्फ तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिली है। सितारा जोर से हंसते हुए बोली। अगर मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिली है तो अब तुम्हारे साथ होगा क्या तारा परी? सुना है जिन्नतों का वंशज काफ़ी ताकतवर है, जिसके द्वारा तुम उस राक्षस का अंत करना चाहती हो जो परी लोक में है। लेकिन अब मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारा जिन्नतों का वंशज बहुत जल्द पैदा होगा, लेकिन मेरे हाथों से मरने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें कैद करने आई हूँ। जैसे ही मैं तुम्हें कैद करूँगी और जिन्नतों का वंशज मेरे सामने पैदा होगा, उसके बाद मैं उसकी जान ले लूँगी। और तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जिन पति तुम्हें बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जिन पति को इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी तारा नहीं हूँ। देखो, अभी मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही लग रही हूँ। सितारा की बात सुनकर तारा हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली। तुम्हें इस तरह से मेरे पति के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। काली परी, तुमने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, और तुम्हें अब इसकी सज़ा मिलेगी। तारा ने जल्दी से अपनी जादुई छड़ी बुला ली। इस वक्त तारा में काली परी से ज़्यादा शक्तियाँ थीं। भले ही उस राक्षस ने काली परी को अपनी कुछ शक्तियाँ दी थीं, लेकिन जिन्नतों का वंशज तारा के पास था। उसने कड़े मंत्रों का उच्चारण किया और सितारा को फूंक दिया। देखते ही देखते सितारा के शरीर में आग जलने लगी। नहीं नहीं तारा परी, तुम इस तरह से मुझे नहीं हरा सकती। तुम्हें मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगी, और इस बार मैं तुम्हें यहाँ से अगवा करके अपने साथ ले जाऊँगी, और तुम्हारी जगह तुम्हारे उस खूबसूरत नौजवान पति के शरीर का आनंद सिर्फ मैं ही लूँगी। ये कहकर सितारा जोर से हंसते हुए गायब हो गई। उसके जाने के बाद तारा का रंग उड़ गया था। उसका दिल अजीब सी शंकाओं से भर उठा था। वो समझ चुकी थी कि उसकी और जिन्नतों के वंशज पर खतरा मंडरा रहा है, और वो भी उसकी अपनी बहन के हाथों। तारा बहुत रोने लगी। वो अमन को अपनी जादू शक्तियों का प्रयोग करके अपने परी होने का एहसास कराना चाहती थी, लेकिन सितारा की बात सुनने के बाद वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद करके कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वहीं अमन तारा की बात सुनने के बाद उसके लिए नाश्ता लेने नीचे चला गया था। करिश्मा जी और अमरेंद्र जी अभी तक नहीं लौटे थे, क्योंकि मल्लिका की राख और डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में उन्हें समय लगने वाला था। उस बदसूरत बुढ़िया के अंदर कई सालों से काला साया था, जिसकी वजह से उसमें आग नहीं पकड़ रही थी। जब तक वे उसे मुखाग्नि नहीं देते, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली थी। अगर करिश्मा जी और अमरेंद्र जी उसे बीच में छोड़ देते, तो मल्लिका की आत्मा कभी भी अमन और तारा से बदला लेने के लिए आ सकती थी। इसीलिए अमरेंद्र जी और करिश्मा जी उसके शरीर को पूरी तरह से ठिकाने लगाना चाहते थे। वे अपने परिवार पर किसी और मुसीबत को आते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए चाहे उन्हें कितने भी दिन लग जाएं, लेकिन जब तक वे मल्लिका के शरीर को मुखाग्नि नहीं देते, तब तक वे वापस नहीं आ सकते थे। तारा थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर करिश्मा जी वहां होती तो वो आसानी से अमन को ये बात बता सकती थी कि वो एक परी है और अमन आसानी से उसकी बात पर यकीन भी कर लेता। लेकिन अब तारा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो अपने जादू का इस्तेमाल करेगी और अमन को हर हाल में यकीन दिलाएगी इससे पहले कि काफी देर हो जाए। तारा के दिमाग में ये आइडिया आ रहा था कि अगर वो एक बार अमन को सारी चीजों के बारे में बता देती है और उसके बाद सितारा उन पर हमला करने की कोशिश करती है तो वो कुछ ना कुछ करके दोनों मैनेज कर ही लेंगे। इसलिए तारा अपना पूरा कड़ा डिसीजन ले चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो अब हर हाल में अमन को सारा सच बताएगी और जल्दी ही वो अमन को खोजने के लिए जाने लगी। उसे किचन से कुछ बनाए जाने की आवाज आने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि अमन उसके लिए कुछ नाश्ता बना रहा होगा। अमन ने उसे पहले ही बताया था कि आज वो उसके साथ ऑफिस जाएगी, तो वो उसे ऑफिस ले जाने से पहले अपने हाथों से कुछ नाश्ता खिलाना चाहता था ताकि उसके वंशज को किसी तरह की कोई भूख न लगे। तो इसीलिए तारा भी जल्दी ही किचन की ओर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर तारा परी ने जब सितारा परी पर हमला किया था तो उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था। वो गुस्से से तिलमिला उठी और तभी उसने उस राक्षस का रुख किया। राक्षस की शक्तियों के द्वारा वो उससे बातें करने लगी और कहने लगी, तारा परी ने इस तरह से मुझ पर हमला किया है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाई, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उस राक्षस ने सितारा परी से कहा, आज तुम तारा परी का मुकाबला इसलिए नहीं कर पाई हो क्योंकि तुमने एक आदमी के साथ अधूरा रिश्ता बनाया है। जब तक तुम उसके साथ पूरी तरह से रिश्ता नहीं बना लेती और उसकी जवानी पूरी तरह से नहीं खा लेती तब तक तुम्हारी शक्तियाँ एक्टिव नहीं हो सकती है।
जैसे ही सितारा परी ने ये सुना वो हैरान हो गई। उसे याद आया कि जब उस राक्षस ने उसे कैद से रिहा करवाया था तो उसने उसे साफ साफ कहा था कि वो केवल उसकी शक्तियों का ही प्रयोग करे, अपने वरदान का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। लेकिन जैसे ही सितारा परी पृथ्वी पर आई और उसने अक्षत और सोनल परी को एक दूसरे की बाहों में देखा, एक दूसरे को चूमते हुए देखा, तो अक्षत खुराना को देखकर उसके मन में लालसा जाग उठी। इसीलिए उसने बिना राक्षस की बात माने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे। और अब उसे समझ में आ चुका था कि आखिरकार वो तारा परी का मुकाबला क्यों नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसकी शक्तियां अपने वरदान का प्रयोग करने की वजह से कमजोर हो गई थीं। वरना उस राक्षस की शक्तियां तो इतनी थीं कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो इसीलिए सितारा परी को पहले अपनी वो गलती सुधारनी थी। उसे जल्द से जल्द अक्षत के साथ दोबारा रिश्ता बनाना था और उसके बाद उसे तारा परी का मुकाबला करना था और फिर जल्द से जल्द तारा परी को अगवा करके उसकी जगह लेनी थी। वो इन सब कामों में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती थी, जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करना चाहती थी। इसके लिए अब काली परी ने जल्दी से सोनल परी का रूप ले लिया और अक्षत खुराना के घर की ओर पढ़ने लगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सोनल परी, जो 24 घंटे अक्षत के साथ थी, उसने अपना सामान्य रूप लेकर अक्षत से मिलने का फैसला कर लिया था। वो समझ चुकी थी कि काली परी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है और अगर उसे अक्षत की जान बचानी है तो उसे उस काली परी का सच बताना ही होगा। अक्षत खुद अपनी बढ़ी हुई उम्र को लेकर अब बेचैन हो उठा था। पहले तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जैसे ही उसके ऑफिस में उसे लेकर गॉसिप होने लगे तो वो हैरान हो गया और इसीलिए वो सोनल परी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा था। वो जल्दी ही अपने घर जाने के लिए बाहर निकला। अचानक जैसे ही वो अपनी शानदार गाड़ी में बैठा तभी उसने देखा कि सोनल परी पहले से ही उस गाड़ी में बैठी हुई थी। सोनल परी को देखकर अक्षत हैरान हो गया, फिर अगले ही पल थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहने लगा, आखिरकार तुम कहाँ चली गई थीं? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए? ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? कल रात हम लोगों ने इतना अच्छा मोमेंट शेयर किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और तुम मुझे छोड़कर चली गई। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो तुम मुझे बता भी सकती हो ना, इस तरह से मुझसे दूर जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? जैसे ही अक्षत ने सोनल से मिलते ही इस तरह की बातें करना शुरू की, सोनल परी हैरान थी और साथ ही साथ थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी कि ये इंसान उसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी वजह से उस इंसान की जवानी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं सोनल परी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसने अक्षत का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी, अक्षत मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ मैं आपको कहूँगी आप मेरी बात बड़े ही ध्यान और सब्र से सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको झूठ बोलकर और ज़्यादा आजमाइशों में नहीं डाल सकती हूँ। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, अक्षत खुराना पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहीं ना कहीं वो सोनल परी की बातों के लिए खुद को तैयार करने लगा था। और तब सोनल परी ने अक्षत खुराना को कहना शुरू कर दिया था, अक्षत कल रात जब मैं अमन के फंक्शन से आपको वापस आपके घर भेज रही थी और जब मैं आपके पास समय बिताने आ रही थी तब मेरी जगह किसी और ने आपके साथ रिश्ता बनाया था। जैसे ही अक्षत ने ये सुना उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था।
उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सोनल कहना क्या चाह रही थी। तभी सोनल परी ने कहना शुरू कर दिया था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें समझनी ही होंगी, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी बातों का यकीन कैसे करोगे। ऐसा कहकर अचानक से सोनल परी ने अक्षत का हाथ पकड़कर सीधा अपने सर पर रख दिया था।